అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః. ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తిభేద విభాగినే వ్యోమవద వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. ఓం సహనావవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సద్గురుదేవ్ మహారాజ్ జీ కే చరణారవిందో కా ధ్యాన్ కర్కే హమ్ లోగ్ ఉన్హీ కీ తపస్థలీ మే బైఠ్ కర్కే మహారాజ్ జీ కా జో హమారే కో మార్గ్ ఉన్హోనే ప్రశస్త కియా హమారే లియే బతాయా, జో వేదాంత కీ చర్చా హర్ రోజ్ హమ్ లోగ్ శ్రవణ కర్తే హై. హమారా విచార్ చల్ రహా హై कि प्रपंच जो दिखाई पड़ता है ये मिथ्या है. मिथ्यात्व को निश्चय करना हम लोगों ने, हमारा हमारे जीवन का लक्ष्य भी मेन यही है कि दुख की अत्यंतक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति. इसी के लिए ही सारा जो महापुरुषों का, शास्त्रों का, वेदों का, स्मृति शास्त्रियों का जो सिद्धांत है वो यही है कि जैसे कैसे भी जिज्ञासु के अध्यास की, अज्ञान की, अविद्या की निवृत्ति हो, तो उसके लिए अलग अलग पद्धतियों से हम लोग श्रवण करते हैं अपने अपने अनुभव के अनुसार या शास्त्र की मर्यादा के अनुसार. महापुरुष हमारे को बतलाते हैं, बार बार जागृत करते हैं. प्रपंच दिखाई पड़ता है हमारे लोगों को, लेकिन किस रूप में दिखाई पड़ता है हम लोगों को? जिस तरह का यह प्रपंच है उसी तरह का दिखाई नहीं पड़ता. सुन लेते हैं हम कि प्रपंच मिथ्या है, पर मिथ्या निश्चय नहीं होता. हम लोगों को सत्य मानते हैं हम, इसलिए हमारा जो दुख है उसकी निवृत्ति नहीं होती. क्योंकि सभी व्याधियों का, दुखों का मूल क्या है? मोह है, अज्ञान है. तो मोह की निवृत्ति विवेक के बिना हो नहीं सकती. और विवेक कहाँ से मिलता है? सत्संग से मिलता है. गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग. जब तक सत्संग में हम आकर के प्रभु के गुणानुवाद को श्रवण नहीं करते, कथा श्रवण नहीं करते, तब तक हमारे को विवेक नहीं मिलता, मोह की निवृत्ति नहीं होती. जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होती तब तक प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं होता, भक्ति नहीं होती, समरण नहीं होता. और विवेक हमारे को यहाँ से ही प्राप्त होता, सत्संग से. सत्संग की महिमा तो आप सब श्रवण करते ही हैं कि सत्संग की महिमा सबसे श्रेष्ठ है. और कोई उपाय नहीं है कली में, इस कलयुग के भयानक मायावी युग में और कोई उपाय हमारे पास नहीं है इस संसार से तरने का. जितने भी उपाय हम लोग ढूंढते हैं ना, वो इस कली में हम लोग कर नहीं पाते शुद्धता से. ना यज्ञ, ना होम, ना दान, ये हम लोग जैसे मर्यादा से करना चाहिए कर नहीं पाते. पहले युगों में ऐसा था, पहले युगों में दान भी था, यज्ञ भी था, होम भी था. तो इस प्रकार अब कली में यह भी बात तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि कल युग केवल नाम अधारा. केवल शब्द लगाया उन्होंने, केवल जहां लग जाता है वहां बाकी सब कट जाते हैं. मात्र एक उपाय है कल युग में प्रभु के नाम का स्मरण करने से उद्धार होता है। वेदांत की बात तो बाद की है, उन्होंने आम साधारण लोगों के लिए उन्होंने कह दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, कली में केवल नाम स्मरण भक्ति संकीर्तन करने से भी हमारे को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जाना तो उसी मार्ग से ही है, ज्ञान मार्ग से, नाम नाम आधारा से कहने से उसमें भक्ति भी आ जाती है, निष्काम कर्म भी आ जाता है। तो जब हम निष्काम कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, उपासना करेंगे, तब हम ज्ञान के अधिकारी बनते हैं। और मोक्ष तो रिते ज्ञानाना मुक्ति, बिना मोक्ष ज्ञान के मोक्ष हो ही नहीं सकती, ये तो अटल सिद्धांत है। पर ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमारे को पहले कर्म और उपासना भक्ति ये करनी पड़ती है। इसलिए जब हम वहां तक पहुंचना है तो हमारे को धीरे धीरे, एकदम तो हम ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते। जाना तो हमारे को कहीं भी, हमारे को पहुंचना है, दुर्गयाना मंदिर जाना है, शिवालय जाना है, दरबार साहब जाना है, तो हमारे को मार्ग से जाना पड़ेगा। सीधा तो कोई उड़ के जा नहीं सकता, जाना तो वहीं है हर एक ने, परंतु कोई थोड़ा सा घूम के जाता है, कोई थोड़ा शॉर्ट जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई पैदल जाता है। जैसा जैसा जिसका मार्ग है उसको उतना ही समय लगता पहुंचेगा, हर कोई आदमी वहीं पहुंचेगा। हमारा सबका गंतव्य मार्ग तो वही है, पहुंचना तो हमने वही है। जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड भागी पाए, कोट जन्म के किर बिखनासे, हर चरणी चित लाए। जो संतों का मार्ग है ना, संत जिस मार्ग पे चलते हैं, संत का मार्ग भाव जहां उनका आचरण होता है। मार्ग उनका कौन सा होता है? मार्ग का मतलब जिस मार्ग से हम चलते हैं, जाते तो वैसे ही है, शरीर करके तो उसी मार्ग से जाते हैं वो लोग। संत का मार्ग जब कहते हैं तो शरीर करके तो एक ही मार्ग है हमारा, उनका चलना फिरना एक जैसा। संत का जो आचरण रूपी मार्ग है, आचरण करते हैं जैसा, वो ऐसा आचरण जो है ना, वो प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि धर्म की पौड़ी, धर्म रूपी सीढ़ी चाहिए संत के मार्ग को पकड़ने के लिए। जिस मार्ग से भाव वो चढ़ते हैं, मोक्ष रूपी महल के ऊपर चढ़ते हैं, उस मार्ग को जाने के लिए धर्म की पौड़ी चाहिए, धर्म की सीढ़ी चाहिए। तो धर्म का अर्थ क्या है? जिसको हम धारण करते हैं उसको धर्म कहते हैं। कर्म में हमारा धर्म हो जाता है, धर्म कोई अलग थोड़ी है, कर्म ही धर्म बन जाता है। परंतु वो कर्म धर्म बनता है जिसको हम कर्ता मान के करते हैं, दूसरा नहीं बनता धर्म। गुरु महाराज जी कहते हैं एक जगह कि केवल कर्म भ्रम से चिन्ह हो। गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का एक वाक्य है कि केवल कर्म भ्रम से चिन्ह हो, धर्म करो अनुरागो। केवल जो आप कर्म करते हैं ना, केवल कर्म, उसमें आपकी श्रद्धा नहीं, निष्ठा नहीं, भक्ति नहीं है, तो वो केवल भ्रम है। महाराज जी कहते हैं कर्म नहीं है वो। भले आप कहो कि हम कर्म कर रहे हैं, जैसे हम मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद संध्या वंदन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यदि उसमें हमारा अनुराग है, प्रेम है, श्रद्धा है, तब तो वो धर्म है, नहीं तो वो केवल भ्रम मात्र है। हमारे को लग रहा है कि हम कर्म कर रहे हैं, कर्म नहीं है वो। कर्म तो तभी बनेगा जब हम उसको निष्ठा से, विश्वास से, श्रद्धा से करेंगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि केवल कर्म भ्रम से चिन्ह हो। केवल जो कर्म है ना आपका, बिना श्रद्धा से, विश्वास, निष्ठा, भक्ति से, अनुराग से, बगैर कर्म है, वो भ्रम है। इसलिए धर्म करो अनुरागो, अनुराग से, प्रेम से उसको करेंगे तो धर्म बन जाएगा। तो जब हम, जैसे पूर्व मीमांसा एक, उत्तर मीमांसा एक, पूर्व मीमांसा, तो पूर्व जो मीमांसा है ना शास्त्र, उसका पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। जैमिनी जी महाराज कहते हैं, जैमिनी मुनि जी ने लिखा है ना, वो कहते हैं अथातो धर्म जिज्ञासा। सबसे पहले धर्म की जिज्ञासा, धर्म करना चाहिए। धर्म करने से, निष्काम धर्म करने से हमारा अंतःकरण की शुद्धि होती है, साधन चतुष्टय की प्राप्ति होती है। जब साधन चतुष्ट विवेक वैराग्य खट संपत्ति मुमुक्षता आती है, जब इस प्रकार चा साधन चतुष्ट से संपन्न होता है ना, जिज्ञासु उसको कहते हैं। फिर जा करके बादरायण मुनि जी महाराज कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज ने उत्तर मीमांसा बनाया ब्रह्म सूत्र, वो कहां से शुरू करते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जहां से शुरू करते हैं। जैमिनी जी ने कहा अथातो धर्म जिज्ञासा, उसमें कर्म का प्रतिपादन है। जब कर्म के उपासना के द्वारा माल और विक्षेप दूर होते हैं, जिज्ञासु बन जाता है, उसको उत्कंठा होती है, मोक्ष की इच्छा होती है, फिर कहते हैं महाराज बादरायण जी के अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म की इच्छा, ब्रह्म को प्राप्त करने करना चाहिए। ब्रह्म को प्राप्त कहां से करना है, ब्रह्म प्राप्त करने वाली वस्तु है क्या? कहा तो जाता है कि ब्रह्म की इच्छा करनी चाहिए। इच्छा यह भी एक नियम है कि किसी भी वस्तु को जानना हो पहले इच्छति, पहला है कि उसकी इच्छा करनी चाहिए, और जब इच्छा होती है फिर यतते, दूसरा नियम है यतते, उसको प्राप्त करने की यत्न करना चाहिए। इच्छति यतते, पहले उसको इच्छा करो फिर यतते फिर उसको प्राप्त करो। तो पहले इच्छा करेंगे ना, जैसे मैत्रेयी को कहते हैं याज्ञवल्क्य जी जब जाने लगे ना घर से याज्ञवल्क्य जी, तो दोनों पत्नियों को पूछा कि मेरी संपत्ति जो है ना, ये जो मेरी संपत्ति है, मैं अब संन्यास लेने जा रहा हूं, तो आपको आधा आधा बांट देता हूं दोनों। तो मैत्रेयी और कात्यायनी दोनों पत्नियां थी उनकी, तो कात्यायनी जो थी उसका भौतिकवाद में प्रवृत्ति थी उसकी, उसने तो बहुत प्रेम से उसने कहा कि ठीक है संपत्ति तो हमारे को दे दो। जब मैत्रेयी से पूछा कि आधी संपत्ति आपको देते, तो उन्होंने कहा भी ये जो संपत्ति आप मेरे को दे के जा रहे हैं इससे क्या होगा, आप किस लिए जा रहे हैं, आपने क्या प्राप्त करना है। तो उन्होंने कहा मेरे को अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसके लिए जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसा धन स्वामी जी चाहिए जिससे मेरी मृत्यु ना हो। मैत्रेयी ने कहा मेरे को बाद में मरना ना पड़े, ना आना पड़े ना जाना पड़े, अमर हो जाऊं मैं, इस धन से हो सकती हूँ जो दे के जा रहे हैं। कहते नहीं इससे नहीं हो सकती। तो कहते फिर मेरे को क्यों फंसाते हैं इसमें, आप इसको छोड़ के जा रहे हैं और मेरे को देने, मेरे को वही दे दीजिए जो आप लेना चाहते हैं। क्योंकि वो जिज्ञासा थी उसके अंदर ना, उसकी अध्यात्म में प्रवृत्ति थी। तब फिर याज्ञवल्क्य जी ने कहा अरे मैत्रेयी आत्मा वारे द्रष्टव्यो मंतव्यो श्रोतव्यो निधिध्यासितव्यो, ऐसा वहां से मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य जी ने उपदेश दिया। अरे मैत्रेयी आत्मा वारे द्रष्टव्य, यदि ऐसा चाहती हो तो आत्मा ही दर्शन करने के योग्य है, आत्मा वारे द्रष्टव्य। फिर कहते श्रोतव्य मनतव्य निधिध्यासितव्य, आत्मा को सुनना चाहिए, आत्मा का मनन करना चाहिए, आत्मा का निधिध्यासन करना चाहिए। मैत्रेयी को यह उपदेश दिया। तो सबसे श्रेष्ठ क्या हुआ, आत्मा का दर्शन, द्रष्टव्य। द्रष्टव्य से क्या, दर्शन कैसे करना है, वो कोई घटपट की तरह थोड़ी है कि दर्शन आंखों से कर लेंगे। द्रष्टव्य बोल दिया ना कि दर्शन करना चाहिए, तो आत्मा का दर्शन कैसे होगा, आत्मा का साक्षात्कार अनुभव, उसमें स्थिति उसका यही बात है। तो उसका दर्शन करने के लिए कहते जब वो दर्शन करने के योग्य है आत्मा तो कैसे होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि यदि आत्मा का दर्शन करना चाहती हो तो श्रोतव्य, पहले सुनना पड़ेगा आपको, फिर मंतव्य, जब सुनेंगे गुरु के पास जाकर के आत्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, प्रपंच क्या है, ये सब सुनेंगे ना। जैसे हम कोई चीज जो असली पहचाननी होती है ना, असली चीज पहचानने के लिए नकली की पहचान होनी चाहिए, तभी असली का पता चलता है ना। आपको दुकानदार जो है अनेक प्रकार का, भले आप कोई दाल लेने जाते हैं, घी लेने जाते हैं, कोई भी चीज लेने जाते हैं तो चार पांच निकाल के रख देता है एक ही बार, ये भी है ये भी है ये भी है। तो सभी असली थोड़ी होती हैं, सभी चीजें असली नहीं होती। वो आपको बताता जाता है इसका इतना रेट है, इसका इतना, इसका इतना, फिर आप पूछते हैं भी इसमें बढ़िया सबसे कौन है, तब वो बताता है कि जिसका सबसे बढ़िया फिक्स रेट है ना वो असली है, बाकी असली नहीं है। तो असली पहचानने के लिए नकली की पहचान होनी चाहिए ना पहले। तो सुनने का मतलब क्या है, जब उन्होंने कहा कि आत्मा को श्रवण करो, तो आत्मा को श्रवण करना के लिए साथ में और कुछ भी बहुत श्रवण करना पड़ता है ना। आत्मा को ढूंढना है, कहाँ है आत्मा, तो इसका मतलब उसके इर्द गिर्द कुछ और भी पड़ा है, बीच में से उसको ढूंढ के निकालना है ना आत्मा को। तो इसलिए ये जो हमारे को दिखाते हैं ना, आत्मा को सुनना चाहिए तो सुनने के बाद मनन करना चाहिए। तो मनन का अर्थ होता है कि जो अर्थ आपने निश्चित किया है ना उसको तर्क से पक्का करना, इसको मनन कहते हैं। और श्रवण कहते हैं कि श्रुतियों का, महावाक्यों का तात्पर्य गुरु जी से सुन के निश्चय करना, उसको श्रवण कहते हैं। श्रवण तो ये भी है जो हम सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ श्रवण का अर्थ होता है कि गुरु लोगों के पास जाकर के जो वेद के महावाक्य हैं उन महावाक्यों के तात्पर्य को सुन के निश्चय करना, इसका नाम श्रवण है। ऐसे थे जो हम सुन रहे हैं यही श्रवण है, लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं है। इसके बाद में जो हम श्रवण करते हैं ना उसमें उसका तात्पर्य सुनना, तो बहुत कुछ होता है ना। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं तो कितनी बात दूसरा आदमी हमारे को बोल जाता है, तो जब हमारा थोड़ा सा उससे बीच में गड़बड़ होता ना काम, हम पूछते हैं कि आप बताइए आपका कहने का मतलब क्या है। कहते हैं ना हम लोग, इतनी बातें मत बनाओ, आप कहते हैं बताइए आप कहना क्या चाहते हैं, यही कहते हैं ना कि आपका तात्पर्य क्या है, रहस्य क्या है आपकी बातों में। तो कहते हैं कि तात्पर्य को निश्चय करना, श्रवण तो हम बहुत कर रहे हैं, उसमें से कहने का तात्पर्य क्या है ये हमने निश्चय करना भी। जो महात्मा लोग बार बार इतनी लंबी व्याख्या करते हैं, इनका कहने का तात्पर्य क्या है, आप कभी नहीं आपने पूछा किसी महात्मा से भी आप हमारे को कहना क्या चाहते हैं बताइए, कभी नहीं पूछा ना हम लोगों ने। ऐसे कान से सुना इधर से निकाल दिया, बड़ी बड़ी लंबी व्याख्याएं होती रहती है, लेकिन बाद में जो जिज्ञासु होगा वो पूछेगा अलग से कि महाराज जी आपने एक घंटा जो हमारे को उपदेश दिया इसका आपका कहने का मतलब क्या है, आप हमारे को कहना क्या चाहते हैं, इसको तात्पर्य कहते हैं। तो तात्पर्य को निश्चय करना जो है श्रवण है। फिर जो तात्पर्य का जिसको हमने निश्चय किया है ना उसको तर्क से पक्का करना, ये बात तो कह दी इन्होंने, लेकिन ये पूरी उतरती भी है कि नहीं, कसौटी पर इसको कसेंगे तो क्या पूरी उतरेगी कि नहीं। तर्क से कहेंगे महात्मा ने बोल दिया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इतना बोल दिया कि ब्रह्म सत्य है संसार मिथ्या है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ये तर्क करेंगे ना कि हमारे को तो पता नहीं चलता भी ब्रह्म सत्य है, हमारे को तो पता नहीं चलता कि जगत मिथ्या है, महात्मा झूठ बोलते हैं कि हम झूठ झूठ समझ रहे हैं। ऐसे तर्क से उसको पक्का करना, इसको कहते हैं मनन करना। जब तर्क से हम उस अर्थ को पक्का कर लेते हैं ना तो उस अर्थ में अपनी वृत्ति को टिका करके रखना, इसको निधिध्यासन कहते हैं, पक्का तेल धारा की तरह, वो अर्थ हमारा इधर उधर जाए ना, उसी में मन हमारा टिका रहे, उसको कहते हैं निधिध्यासन। तो इसलिए कहा मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य जी ने कि आत्मा वारे द्रष्टव्यः, आत्मा ही दर्शन करने के योग्य है, भाव साक्षात करने के योग्य है। तो उसके लिए श्रवण है, फिर मनन है, फिर निधिध्यासन है। हम लोग श्रवण कर रहे हैं अभी, श्रवण में जैसा अभी हमने बताया वैसा करना है, इसके बाद में उसको तात्पर्य को समझना है कि महात्मा लोग हर रोज जब इतनी इतनी व्याख्या करते हैं उसका हमारे को समझाना क्या चाहते हैं, हमारे को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। उसके लिए कहते हैं कि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, पहले धर्म चाहिए हमारे पास। श्रवण तो हम वेदांत का करते हैं ना, लेकिन अभी हम चल कहाँ रहे हैं, अभी तो हम धर्म की कर्म की परिभाषा भी नहीं समझ पाए। हमारे को कर्म का धर्म का पता चल जाए तभी तो पता चले कि धर्म कैसे होता है। हमारे को जब कर्म की फिलॉसफी समझ में आ जाएगी ना फिर हमारे को संसार में जीना आ जाएगा, कि कैसे कर्म करना ही तो जीना है और क्या करना है। हमारे को जीना कहाँ आता है, दुखी तभी होते हैं जब जीना हमारे को नहीं आता। केवल लोगों की दृष्टि में हम जी रहे हैं, कभी कभी हम ऐसा कहते भी हैं कि केवल आपके सामने हम चल फिर अवश्य रहे हैं, लेकिन हमारे से पूछो मत। कहते हैं ना एक दूसरे से कि आपको ही अच्छा दिखाई पड़ता है, हमारे से पूछो कि हमारी क्या हालत है। इसका मतलब हम लोगों की आंखों में धूल झोल रहे हैं, लोगों के सामने हंस हंस के भी दिखाते हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन अंदर से नहीं। अंदर से हम जानते हैं कि हमारी क्या हालत है, लेकिन दूसरे को बताना नहीं चाहते। अंदर से समझते हुए भी दूसरे के सामने दिखाते हैं, अच्छा खुश होकर के दिखाते हैं। इसका मतलब हमारे को खुद जीना नहीं आता अभी, हमारे को कर्म की या धर्म की फिलॉसफी आती नहीं है। एक दूसरे को देख करके करते रहते हैं, दान कर दिया, कहीं जा करके यज्ञ में बैठ गए, कहीं स्नान करने चले गए, तीर्थ में चले गए, नहाने चले गए, लेकिन क्या पता है वहाँ जा करके कैसे नहाना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए। ये सभी बातें सत्संग से मिलती है ना। जब धर्म हमारा पक्का हो जाएगा तो धर्म करते करते फिर हमारे अंदर जब निष्कामता आएगी, हमारी कामनाओं की धीरे धीरे निवृत्ति होगी, तब हमारे को साधन चतुष्टय के बाद में फिर ऐसा श्रवण प्राप्त होगा। ये भी हम जो श्रवण कर रहे हैं, ये भी एक क्रिया है ना, क्रिया, ये भी कर्म है, कर्म है, ये भी एक ज्ञान नहीं है, कर्म है। ये कर्म हमारा ऐसा है कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो कुछ देर के लिए अवश्य हमारी जो वृत्ति है उसका टिकाव होता है, यहाँ माया का प्रभाव नहीं रहता। तो जब हम इसके अनुसार श्रवण करेंगे ना, तब हमारे को पता चलेगा। मिथ्यात्व का निश्चय करना, ये चल रहा है हमारा प्रसंग, तो आत्मा ही दर्शन करने के योग्य है। पहले तो ये बात श्रवण अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि संसार में यदि आपको कुछ प्राप्त करने योग्य है तो क्या है, आत्मा। इसका मतलब जो हम सब कुछ प्राप्त कर रखा है ना हमने अपने प्रयत्न से, वो प्राप्त करने योग्य नहीं था, कर लिया हमने इकट्ठा उसको, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। उसको तो हम प्राप्त करके बहुत खुश हैं कि हमने इतनी संपत्ति बना ली, हमने इतना कुछ बना लिया, ये हमारा प्रयत्न है। बहुत हम अहम में रहते हैं कि इतना किसी ने नहीं बनाया, इतना मैंने बनाया, मैंने इतना कुछ करके दिया, लेकिन किसके लिए किया है? अपने लिए कुछ नहीं किया हम लोगों ने, दूसरों के लिए किया है, और दूसरों के काम में आएगा, हमारे काम में आने वाला कुछ भी नहीं है। दूसरों के लिए का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमने इकट्ठा किया ना इस शरीर के काम आ जाएगा, तो शरीर तो हमारा नहीं है, दूसरे के लिए हुआ ना, जो भी हमने इकट्ठा किया शरीर के लिए किया ना। दूसरे का मतलब होता जो हमारे से अलग है, तो इंद्रिय हमारे से अलग हैं, कर्ण हमारे से अलग हैं, अंतःकरण हमारे से अलग है, शरीर हमारे से अलग है। तो जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया ना, केवल दूसरे के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने लिए तो कह दिया उन्होंने कि आत्मा ही द्रष्टव्य है, हम स्वयं ही आत्मा हैं, आत्मा कहीं से लाना थोड़ी है। भाव अपने आप को जानने का यत्न हमने नहीं किया। संसार की जितने ज्ञान है उसको हम इकट्ठा करना चाहते हैं, बहुत दूर तक हम लोग पहुंच जाते हैं। पूरा वर्ल्ड जो है ना, पूरा ब्रह्मांड, उसको हम नेट पे देख लेते हैं कि हमारे को मालूम है अमेरिका कहाँ, कनाडा कहाँ है, लेकिन हम कहाँ हैं ये कभी नहीं सोचा हमने कि हम कहाँ हैं। कभी पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को देखा कि मैं कहाँ हूँ? देखोगे तो कहीं मिलेगा ही नहीं बिना शरीर के। पूरा नक्शा बना के कहीं खड़े हो अपने आप को देखो तो कहाँ देखोगे? खड़े हो दिखाओगे तो आपका शरीर दिखेगा, आप नहीं दिखेंगे कहाँ हैं। अपने को कहाँ से ढूंढेंगे? अपना आप तो उसमें है ही नहीं। अपना आप क्या है? सच्चिदानंद है। सो प्रभ दूर नहीं, प्रभ तू है, उसको कहीं ढूंढना नहीं कहते। सब किसे आपे आप ही है। तो बात यह चल रही है, कल हमने विचार किया था कि नहीं, जो याही मैं तीन काल में तही भान हुए मध्य काल में सुक्ति रूपे व्यास, जो भ्रमम अर्थ ज्ञान दो भांति का कर्मम। जो वस्तु जिसमें तीनों कालों में नहीं है वो उसी में भासती है मध्य काल में। सीपी में चांदी कभी तीनों कालों में नहीं है, लेकिन मध्य काल में भाव भ्रांति काल में वही सीपी में दिखती है। रज्जू में सर्प तीनों कालों में है नहीं है, लेकिन जब भ्रांति काल में वही दिखता है, वही जहां पर नहीं है वही दिखता है। लेकिन जब भ्रांति उठ जाती है ना, फिर क्या होता है, फिर पता चल जाता है कि रज्जू में सर्प तीनों कालों में है ही नहीं, केवल भ्रांति थी। जब तक नहीं पता चलता तक तब तो कहते रहे महाराज जी रविदास जी कि नरपत एक सिंहासन सोया सपने भया भिखारी, अच्छत राज विचलित दुख पाया सो गति भई हमारी। कहते हैं प्रभु हमारी वैसी गति हो गई जैसे एक राजा को सिंहासन पे बैठे बैठे उसको निद्रा आ गई, तो उसको लगा कि मैं भिखारी हो गया। जनक को ऐसे लगा कि मैं भिखारी हो गया, बैठे थे अपने सिंहासन पर, दिन की बात है, सिंहासन पर बैठे थे, सभी राज्य उनका है, वहीं पर विद्यमान है, उनकी दासियां दास सब सेवा में हाजिर हैं, तब भी उनको ऐसा हो गया कि मैं भिखारी हो गया। सपने में हुआ वो, सो गति भई हमारी। कहते हैं प्रभु हमारी भी उस जनक राजा जैसी गति हो गई, जैसे उनको दिन में हुआ था ना कि मैं भिखारी हो गया, ऐसे हमारे को जागते हुए हो गया कि मैं जीव हूं, मैं छोटा हूं, मैं मरता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा हुआ ना, स्वप्न में नहीं हुआ, हमारे को जागते हुआ है ना। अब हम अपने को जागा हुआ मानते हैं तब भी हम अपने आप को समर्थ थोड़ी मानते हैं, दुखी मानते हैं, सुखी मानते हैं, पुण्य मानते हैं, पापी मानते हैं, तो क्या है ये, ये सब भ्रम है ना, भ्रम के कारण ऐसा हो रहा है। तीनों कालों में हमारे में ये धर्म कोई है ही नहीं, ना हम सुखी हैं, ना दुखी हैं, ना पुण्य है, ना पापी है, ना देह है, ना कर्म है, कुछ भी नहीं हम लोग, फिर भी अपने आप को मानते हैं। मध्य काल में जो यहीं में तीनों कालों में नहीं है उसी में मध्य काल में भासता है, जो हमारे में ये धर्म तीनों कालों में नहीं है, कभी हम सुखी नहीं थे, कभी दुखी नहीं थे, ना दुखी होंगे ना सुखी होंगे कभी, लेकिन बीच में हम सब कुछ हैं, बीच में हम उपदेश भी करने वाले हैं, उपदेश सुनने वाले भी हैं, गुरु भी हैं, चेला भी हैं, सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, बीच में सब कुछ है, लेकिन ना पहले हम ऐसे थे ना बाद में ऐसे होंगे, यही कहते भ्रम है, यही अध्यास है। ये जो अध्यास है ये दो प्रकार का है, अध्यास शब्द का अर्थ कल भी बतलाया था लेकिन आज और बढ़ गई है ना संगत, इसलिए फिर बताते हैं कि अध्यास किसको कहते हैं। काल भी बताया था कि अध्यास, जैसे थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा चिंतन करेंगे ना, अध्यास शब्द में दो शब्द हैं, एक अधि है एक आस है, अधि आस को मिला करके बनता अध्यास, अधि का अर्थ होता है ऊपर और आस का अर्थ होता है बैठाना, अन्य के ऊपर अन्य को बैठाना, दूसरे के ऊपर दूसरे का आरोप करना, ये अध्यास है, दूसरे के बीच में दूसरे का कल आरोप कर लेना, उसको जैसे रस्सी है ना, रस्सी, रस्सी के ऊपर हमने अपनी कल्पना से सर्प को बैठा दिया, रस्सी तो रस्सी है, उसमें सर्प कहाँ है, हमने बैठाया है ना, हमारे को भ्रम हुआ तो हमने उसको सर्प मान लिया, तो अध्यास का अर्थ है कि अन्य किसी दूसरे के ऊपर किसी दूसरे का आरोप कर लेना, कल्पना कर लेनी, मान लेना झूठा, उसको अध्यास कहते हैं, उसी को भ्रांति भी कहते हैं। दूसरा अर्थ उसका है अध्यास का कि जो हमारे भ्रांति का विषय वस्तु है, जैसे रज्जू में सर्प है ना, ये हमारी भ्रांति का विषय है, और एक तो सर्प और सर्प का जो झूठा ज्ञान, दोनों का अध्यास कहते हैं, दोनों ही भ्रम है ना, ना तो सर्प सत्य है ना उसका ज्ञान सत्य है, इन दोनों को अध्यास कहते हैं, दोनों को भ्रांति कहते हैं, ज्ञान भी उसका झूठा है और सर्प भी झूठा है, चांदी भी झूठी है, चांदी का ज्ञान भी झूठा है, सीपी सत्य है, सीपी का ज्ञान भी सत्य है, रस्सी सत्य है, रस्सी का ज्ञान भी सत्य है, इसी प्रकार ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म में जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति भासती है ना, या प्रपंच भासता नाम रूप, ये इसका ज्ञान भी झूठा और ये भी झूठा, ना तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति सत्य है ना इसका ज्ञान सत्य है, सत्य क्या है, ब्रह्म, इसलिए कहते ना शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये उनका सिद्धांत है, विवेक चूड़ामणि में कहते हैं वो कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत क्या है, मिथ्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर ये कुछ भासता है ना, ब्रह्म के बीच में सब भास रहा है, वो ही सत्य है, जो भासने वाला प्रतीत होने वाला है वो सत्य नहीं होता। जैसे एक यहाँ पर चित्र है ना, ये चित्र लगा हुआ ना, चित्र ये चित्र जो बना हुआ है, इसमें सत्य क्या है? इसमें सत्य है कुछ? हमारे को इसको तो हम वैसे समझते ही हैं, इसको हम समझते हैं भी ये सत्य नहीं है, इतना तो हम भी जानते हैं कि ये फोटो है, सत्य नहीं है। लेकिन देखो फोटो के अंदर कपड़े भी हैं, फोटो भी है, फोटो में वस्त्र भी हैं। ये जो वस्त्र हैं फोटो में, इनका आधार क्या है? ये वस्त्र भी वस्त्र थोड़ी हैं, इनको हम वस्त्र ही कहते हैं ना, वस्त्र पहने हैं। लेकिन ये वस्त्र नहीं, वस्त्राभास है, इसको वस्त्राभास कहते हैं। वस्त्र की छाया है, ये वस्त्र नहीं है। वस्त्र के अंदर रंग भी हैं, वस्त्र के अंदर रंग भी हैं। रंग कहाँ, रंग का आधार कौन है? वस्त्र भी झूठा तो वस्त्र में तो रंग है, तो उनका आधार कौन हुआ? कहने का तात्पर्य जिसके ऊपर ये दिख रहा है ना, वो इनका आधार है ना। वस्त्र सत्य है ना, वस्त्र के रंग सत्य हैं, कुछ भी सत्य नहीं इसमें से। लेकिन हम लोग तो बोलते हैं ना, ये वस्त्र हैं, ये रंग हैं, उनको हम वैसी तरह बोल रहे हैं, ये वस्त्राभास है, रंग का आभास है, रंग की छाया है नहीं है। इसका जो आधार है, अधिष्ठान है, जिसके ऊपर ये बना हुआ है फोटो, वो सत्य है। इसी प्रकार ये जो जितने दिखाई पड़ते ना, हम लोग क्या फोटो हैं? हम लोग फोटो है ना, हम लोग हमारे ऊपर वस्त्र पहने हुए, वो क्या है? जब हम फोटो ही हैं, और क्या है? शीशे में हमारी पड़ रही फोटो। ऐसे ही ब्रह्म के अंदर, जो ब्रह्म है ना, उसके अंदर हम लोगों के चित्र हैं। ब्रह्म एक मानो सामने दीवार है ना, जैसे उसके ऊपर चित्र बना होता है, ऐसे ब्रह्म के बीच में हम लोग सब हैं। तो हमारा जो आधार है वो सत्य है, हम तो चित्रों की तरह चित्र हैं, ब्रह्म के अंदर दिख रहे, दिखाई पड़ते ना। कहते हैं ना गुरु महाराज जी, माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बुझे कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। कहते गोविंद के बगैर कुछ है ही नहीं, तो क्या है ये? कहते फिर चित्र विचित्र, माया चित्र विचित्र विमोहित। जो कहते चित्र विचित्र, अनेक प्रकार की माया है ना, विमोहित विशेष करके, वो हमारे को मोहित कर रही है। पर बिरला बुझ है कोई, किसी किसी को मालूम है कि ये केवल माया है और कुछ नहीं है। कोई कोई जानता है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। हमारे को नहीं लगता, किसी किसी को लगता, तत्ववेता महात्माओं को लगता कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव ब्रह्म इव न पर, जीव ब्रह्म ही है अपर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्म सत्य है, जो उसमें चित्र दिखाई पड़ते हैं ना, वो चित्र सत्य नहीं है, चित्र के वस्त्र भी सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, वो वस्त्राभास है केवल, उसकी छाया है। ये कहते हैं कि दो प्रकार का हमारे को अध्यास पड़ गया, एक तो विषय का, एक विषय के ज्ञान। दो प्रकार का झूठा हमने मान लिया, सर्प भी झूठा, सर्प का ज्ञान भी झूठा। लेकिन जब तक हमारे को भ्रांति है, तब तक वो झूठा कभी नहीं लगता। उस रस्से के ऊपर हमारा पांव आ जाए ना, कभी पैर आ जाए, तो हम गिर पड़ते हैं रात्रि को। सर्प कहाँ है उसके बीच में, लेकिन है सत्य कि नहीं, तभी तो हम गिरे पीछे एकदम ऐसे होते हैं। सत्य माना है उसको, सर्प को भी सत्य माना, सर्प का ज्ञान एकदम, सर्प एम सर्प कहते हैं ना, ये सर्प है ऐसे बोलते हैं, है सर्प, तो क्या हुआ? सर्प का ज्ञान भी हुआ, तभी तो बोला कि यह सर्प है। तो सर्प भी झूठा था, लेकिन भ्रांति काल में सत्य है वो। तो काल भी बताया था कि भ्रांति होती कब है, किसी भी कहीं पर भी हमारे को भ्रांति होती है, उसका कारण क्या है? कहीं भी संसार में किसी चीज में भी हमारे को भ्रांति होती ना जब, तो फिर उसमें कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जिस वस्तु के भीतर हमारे को कोई भ्रांति होती है ना, उस वस्तु को हम सामान्य रूप से जानते हैं, विशेष रूप से नहीं जानते, इसलिए हमारे को भ्रांति होती है। और अज्ञानी को कभी भ्रांति नहीं होती, जो अज्ञानी है उसको भ्रांति नहीं होती। बच्चा है ना छोटा सा, उसने सर्प ना देखा है ना सुना है कभी, उसके सामने सर्प आ जाए तो उसको हाथ में पकड़ने के लिए भागेगा, वो भागता कि नहीं? उन्हें कभी नहीं सुना कि सर्प क्या होता है, उसको नहीं मालूम। अग्नि, जो अग्नि होती है, अग्नि उसने सुनी नहीं कभी, बच्चे ने, आम ही आपने बच्चों को देखा होगा कि चूल्हे की तरफ भाग करके जाते हैं अग्नि को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो अनजान है, उनको अग्नि के बारे में मालूम ही नहीं है कि अग्नि नाम की कोई चीज होती है। अज्ञानी को भ्रांति नहीं होती, बच्चा को भ्रांति नहीं होती कि सर्प है या अग्नि है। सर्प को भी भाग के पकड़ने के लिए जाएगा वो, जैसे खिलौने वाला सर्प होता ना, खिलौने वाला जो ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं, बच्चा उसको पकड़ता भाग करके मेरे को चाहिए, उसको नहीं मालूम। यदि उसको आप कह दोगे ना सर्प है, उसके धीरे धीरे उसके अंदर संस्कार बढ़ जाएंगे। रात्रि को वही सर्प उसको दिखाओ खिलौने वाला, तब भी भागेगा वो, उसको भ्रांति, उसको सामान्य रूप से ज्ञान हो गया ये सर्प है, इतना पता नहीं कि ये झूठा सर्प है। उसको केवल आपने बता दिया ये सर्प है, ये काटता है, उसको बता दीजिए आप, भले वो खिलौने वाला ही हो, उसको एक बार बच्चे को कह दीजिए कि सर्प है ये आपको काटेगा, तो बच्चा उससे भागने लगेगा, क्योंकि सामान्य रूप से उसको ज्ञान हो गया कि ये सर्प है ये काटता है, लेकिन विशेष रूप से नहीं मालूम कि ये झूठा है, इसलिए वो डरता है। हम लोगों का भी ये हाल हुआ ना, हमारे को मालूम है कि सर्प इसमें ये पता है कि यहाँ कुछ पड़ा है, लेकिन ये नहीं पता कि रस्सी पड़ी है, ये पता है कि यहाँ कुछ पड़ा है, तो भ्रम हो गया कि रस्सी है कि सर्प है, इसलिए डर गए हम लोग। जब हमारे को पता चल जाएगा लाइट दे करके देखेंगे ये रस्सी है, तो फिर नहीं क्या हमारे को भ्रांति नहीं होगी। तो भ्रांति इसलिए होती, या तो बिल्कुल ज्ञान ना हो उसको भी भ्रांति नहीं होती, या किसी को विशेष रूप से ज्ञान हो उसको भी भ्रांति नहीं होती। ना अज्ञानी को भ्रांति होती है ना ज्ञानी को होती है, दोनों को भ्रांति नहीं होती। भ्रांति किसको होती है? जिज्ञासु को, जो सामान्य रूप से जानता है विशेष रूप से नहीं जानता, उसको भ्रांति होती है। अज्ञानी जानता ही नहीं है इसलिए उसको भ्रांति होती नहीं है। नास्तिक लोग होते हैं ना जिन, जो कहते हैं ईश्वर रब कुछ नहीं होता है, उनको कोई संशय नहीं होता, वो कहते हैं कुछ है ही नहीं तो क्या करना, कोई रब रूप कुछ नहीं है, वो डरते नहीं किसी से बिल्कुल, क्योंकि उनको उसके बारे में कोई है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, अभी वो होता ही नहीं, वो कहते है ही नहीं है। जो जानता है ना कि हाँ परमात्मा नाम की कोई चीज है, वो डरता है, उसको संशय होता है, और विषय में भी रहता है और उसकी तरफ भी जाता है। जब विषय से दुखी होता है तो उसकी तरफ जाता है, जब वहां से उसका मानने लगता फिर विषय में आ जाता है। ऐसा जो जिज्ञासु होता है उसको भ्रांति होती है, जिसको भ्रांति होती है वही उसकी निवृत्ति कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। हम लोगों को भ्रांति है, ये भी हमने सुना है कि परमात्मा है, और ये भी है भी प्रपंच है, ये भी हमने सुना है, दोनों हमारे को सामान्य रूप से दोनों का ज्ञान है, लेकिन ब्रह्म का ये नहीं कि ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा हमारे को ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारे को ब्रह्म होता है। इतना है कि ब्रह्म है, कोई परमात्मा है, वो स्वामी है, मैं सेवक हूँ, ये हमारे को मालूम है। ये नहीं है कि सेवक स्वामी भाव कुछ नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब ऐसा विशेष ज्ञान हो जाएगा तब भी भ्रांति नहीं होगी, तो बीच वाले को भ्रांति होती है, इसलिए हम लोगों को भ्रांति है। तो भ्रांति है जब हमारे को अध्यास की सिद्धि हो जाएगी ना, कि अध्यास किसको कहते हैं, तब हम अध्यास की निवृत्ति भी कर लेंगे। जिसको हम जानते नहीं उसको हटा नहीं सकते कभी भी, जिसको हम जानते ही नहीं ना उसको कभी नहीं हटा सकते। कोई आपको बोल देता नहीं कि फलाने आदमी को यहाँ नहीं घुसने देना, तो हम कहते हैं पहले उसकी शक्ल तो दिखाओ, तभी तो उसको नहीं घुसने देंगे ना। जब जानते नहीं तो कैसे कहेंगे भी उसको हम नहीं घुसने देंगे, पहले हम उसको जानना चाहते हैं वो कैसा है, तब उसको हम यहाँ नहीं आने देंगे। उसका हमारे को परिचय बताओ वो कैसा कैसा है, यदि हमने नहीं देखा होता तो हम परिचय पूछ लेते हैं उसका, कैसा रंग है, वो कितना लंबा है, उसने क्या पहना है, तो ये परिचय पूछ लेते हैं तब हम देते हैं कि ये ऐसा आदमी है, इसको जहाँ नहीं आने देना। परंतु पहले जानेंगे तभी तो उसको हटाएंगे ना। तो हम लोग जो है हटाना चाहते हैं प्रपंच को, लेकिन जानना नहीं चाहते भी वो है कैसा प्रपंच। ये सामने जब महात्मा कहते तब हम ही कहते हैं कि इसको हम हटाएंगे, लेकिन ये जानना नहीं चाहते भी ये है क्या। जान जाएंगे तो हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको हटाने में। अभी हमारे को समझ में नहीं आई कि ये क्या है, जब समझ में आ जाएगा तब हटाने में समय नहीं लगता है। कई युगों से किसी गुफा में अंधकार हो ना, कई युगों से उसमें अंधेरा है, तो उसको हटाने के लिए उतने युग नहीं लगते हैं। केवल दीपक जला तो अंधकार गया, केवल उसको जानना है कि इसको हटाना कैसे, तो इसी प्रकार तो है, एक जन्म से थोड़ी हमारे को अध्यास पड़ा है, प्रपंच का कई जन्मों से पड़ा है ना अध्यास, तो इतने जन्म थोड़ी लगेंगे उसको हटाने के लिए जितने जन्मों से पड़ा हुआ है। केवल जानना ही तो है, जब जान गए तो हटने में समय नहीं लगा। इसलिए बोले शाह कहते भी इधरों पटना इधर लौना, रबदा की पौना बोलिया इधरों पटना तो इधर लौना, पुटन लौन समय थोड़ी लगता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे को केवल उसको जानना है, उसका यथार्थ रूप कि है क्या। तो ये कहते हैं भी ये सब भ्रांति है और कुछ भी नहीं है, जो संसार है केवल अध्यास मात्र है। कैसे है? सुगति रूपेवत अध्यास, जैसे सीपी में चांदी भासती है ना, वो अध्यास है, ब्रह्म है। उसी प्रकार ब्रह्म में तीन अवस्था जो है ना, ये भ्रांति है। जब इतना समझ जाएंगे चांदी भी नहीं वहाँ भासेगी, तो जागृत स्वप्न में नहीं भासेगी हमारे को लगता है। इसलिए गुरु महाराज जी ने बार बार हमारे को चेतन किया है कि चेतना है तो चेतले निस दिन में प्राणी, शन शन औध बेहात है फूटे घट जो पानी। हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया, फरीदा कितने तेंडे मापिया जिन्नी तू जने वो है। फरीद साहब कहते हैं कि तेरे को मालूम नहीं पड़ा अभी तक कितने है, कहाँ हैं तुम्हारे माता पिता, जिन्होंने तेरे को पैदा किया वो कहाँ गए, अभी भी नहीं समझ पा रहे तुम। तय पासों वो लद गए तू अजय ना पतीण है। कहते तेरे तेरे को उन्होंने जिन्होंने पैदा किया था तेरे देखते देखते तेरे से चले गए तेरे पास से, तू अजय ना पतीण, तेरे को अभी तक विश्वास नहीं हुआ। इससे ज्यादा और हमारे को क्या बताएंगे, वो समझाने की शैली है ना उनकी। उन्होंने कोई हमारे को सूत्र थोड़ी बताना ब्रह्म सूत्र का, हम लोगों के लिए बताया उन्होंने। इतनी बात से सब कुछ निकल जाता है। माता पिता का यही थोड़ा कि केवल दो माता पिता को लेना है, सभी जितने हैं। ये कहते हैं कि आंखों से देखते देखते कितने लोग चले गए, हम लोगों को देखते एनी लोयनी देख दिया। कहते हैं भक्त जी मारे के एनी लोयनी देख दिया केती चल गई। फरीद साहब कहते इन आंखों के देखते हुए पता नहीं कितने लोग चले गए, हम आंखों से देखे हैं। फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई, एनी लोयनी देख दिया केती चल गई। फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई, मेरे को तो अपने अपने से मतलब हो रहा कि मैं नहीं जाऊंगा, इनको देखते हुए मैं थोड़ी जाना है। अभी आज किसी को छोड़ा है शमशान घाट में तो हम फिर स्थिर हैं, हमारे को जाना ही नहीं है कहीं ना। यही तो हम समझते हैं कि कोई नहीं, आज उसका मतलब आज उसकी क्रिया कर दी हमने, अभी हम तो हैं, लेकिन हमारी भी तो क्रिया होगी एक दिन, ये तो कभी सोचा नहीं हमने। दूसरों की क्रिया करते रहते हैं, दूसरों को शमशान घाट पहुँचाते रहते हैं। इसलिए कहते भगत जी की फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई, मेरे को अपनी पड़ी हुई है कि मेरे को तो कोई मतलब नहीं किसी से। तो यही तो अध्यास है ना, यही भ्रम है ना, इसी को तो समझना है। यह भी बात भगत जी महाराज कहते हैं कि पारोसी के जो हुआ तू अपने भी जान, इससे ज्यादा सावधान क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं ऐसा मत समझना कहीं कि पड़ोसी के घर में आग लगी है तेरे भी लगेगी एक दिन, यही तो है ना उसका कहना। पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान, जो तेरे पड़ोसी के साथ हुआ है तू समझ भी तेरे साथ होने वाला है। तो जब हमारे को कोई बता देता है तब हम समझते हैं कि आपके बगल में पानी आ गया है, बस आपकी कोठी में आया समझो, तब भागते कि नहीं भागते, पता चलता है कि अब आ जाएगा। लेकिन जब तक पता चलता है कि शहर के दूसरी तरफ है पानी, हम तो लोग अभी बचे हुए हैं, तब तक हमको नहीं होता। जब हमारे यहाँ आती है ना तो फिर पता चलता है। मैं जानिया पढ़ बो पलो पढ़ बे सो पर जोग, ये कहते हैं ना, कहते मैं जानता हूँ भी मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मेरे को मालूम नहीं है। उच्चे चढ़ के देखा घर कर एहा आग, जब ऊपर दृष्टि करके कहते देखा ना, ऊंचे चढ़ के का मतलब क्या हुआ, जब अपने चिंतन रूप ऊंचाई में चढ़ के समाधि में जा करके देखा तो घर घर यह आग, सभी घरों में ऐसी अग्नि है। तो समझना क्या अध्यास है, कहने का मतलब ये कि अध्यास को हम लोग समझ नहीं पा रहे, देखते हुए हम लोगों के सामने सारा संसार जा रहा है, तब भी हम अपने को नहीं मानते कि हम जाएंगे, शरीर करके नहीं मानते जाएंगे। तो जिसको मृत्यु याद रहती है ना, वो उसको कभी अध्यास नहीं होता। किसी आदमी को बता दिया जाए ना कि आपकी इतने दिन के बाद इतने बजे मौत होगी, तो उसको अध्यास होता है, कहीं उसको नींद भी नहीं आती, ना उसको भूख लगती है, ना उसको कभी दुख देता है कुछ भी, कभी भी नहीं उसको होता। उसको कहो तुम सो जाओ, कहेगा अब क्या सोना है, अब तो गए। उसको एक एक मिनट गिनते ही उसका समय आ जाता है, पर उसको पहले पता चल गया नहीं अब मैं मरना है। तो जो तत्ववेत्ता होते हैं वो समझते हैं कि मृत्यु उसकी हो जानी है, अवश्य हो जानी है। जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है, जो मृत्यु वाला है उस फिर जन्मता है। ये चक्कर चलता ही रहता है। कब तक चलता रहता है चक्कर जन्म मरण का? कहते हैं जिस प्रकार एक चने का दाना होता है ना, चने का दाना होता है, उसका उगना, उसका फूलना, उसका काटना कब तक चलता रहता है मालूम है कभी आपको? चने का जो दाना होता है कब तक उसका जन्म है, कब तक मरण है, कब तक काटते हैं, कब तक हरा होता है? जब तक उसको दो टुकड़े नहीं कर देते, जब तक उसके दो टुकड़े नहीं करते तब तक चलता रहता है। उसको दो टुकड़े कर देंगे तो उसके बाद दाल बना देंगे, उसको बीज दो आप, उगता है क्या? नहीं उगता है। या उसको भून देते हैं तब भी नहीं उगता। तो सार असार को जब तक जान लें नहीं ना जानते हम लोग, तब तक होता है। चावल का चावल निकालना हो तो क्या करना पड़ता है? छिलका उतार के चावल निकालते हैं, छिलका उतार देते हैं, चावल निकाल लेते हैं। कहने का भाव है कि उसमें से जो सार था वो हमने निकाल लिया, जो असार था उसको फेंक दिया। तो हम लोगों को सार और असार की नहीं, हमारे को मालूम नहीं कि सार असार क्या है। जो जड़ है, जो अनात्मा है, जो प्रपंच है, उसको हटा दो, जैसे चावल आपने निकाल दिए, तो जो अपना आत्म स्वरूप है उसमें से ढूंढ लो। जब सार को छोड़ देंगे तो फिर थोड़ी बनेगी बात। छिलका थोड़ी कोई ले लेता है चावल को फेंक के, चावल लेते हैं छिलका फेंक देते हैं, भूसा फेंक देते हैं। हमारे को तो हम लोगों ने भूसा इकट्ठा कर रखा है। हम लोग क्या इकट्ठा कर रहे हैं? भूसा। संसार की वस्तुएं क्या है? यही हम इकट्ठी कर रहे हैं ना, ये तो भूसा है। चावल तो फेंके जा रहे हैं हम लोग, जो इसमें से तत्व है वो थोड़ी हम इकट्ठा करते हैं, हम तो भूसा इकट्ठा करते हैं, मिथ्या वस्तु को इकट्ठा करते हैं ना। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि साधो एहो तन मिथ्या जानो, हे जिज्ञासु, हे प्राणी, यह शरीर जो है वह मिथ्या है, ये मिथ्या शरीर है। शरीर से कहने से प्रपंच भी आ जाता है। जब ये मिथ्या है तो बाकी सब मिथ्या है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। तो कहते या भीतर जो राम बसते है साचोता है पहचानो, इसके अंदर जो राम रहता है ना वो सत्य है, ये सत्य नहीं है, इसको मिथ्या जानो तुम। तो जो राम है उसको जानो, राम के साथ अभेद होना हमको। ये कहते हैं कि ये दो प्रकार का आपको अध्यास हो गया, एक विषय का, एक विषय के ज्ञान का। कल बताया था कि दो प्रकार का है, अब आगे आज कहते हैं कि अर्थ भ्रांति व छठविदा बको। जो दो प्रकार की भ्रांति है ना, दो प्रकार का अध्यास है, सर्प का और सर्प का ज्ञान। इसमें से जो सर्प का अध्यास है वो कहते छह प्रकार का है, विषय का, सर्प मतलब विषय का, किसी भी घटपट का, किसी का भी, चांदी का, सर्प का, स्थाणु का, गंधर्व नगरी का, मरुस्थल के जल का, जितना भी आपको अध्यास होता है ना वो छह प्रकार का है। अर्थ का जो अध्यास है छह प्रकार का है, और छह प्रकार का अध्यास इसी में आना है आगे कि छह प्रकार का कौन कौन सा है। तो यदि यहां पर समझ लेंगे तो फिर थोड़ा सा वहां जाकर के और समझ में आएगा छह प्रकार का कौन कौन सा है। तो पहला है कौन सा अध्यास, कौन सा अध्यास है पहला? नहीं, भ्रांति तो हो गई, अध्यास। भ्रांति तो है पांच प्रकार की, उसमें से पहली है भेद भ्रांति, दूसरी कर्ता भोक्तापने की भ्रांति, तीसरी संग की भ्रांति, चौथी विकार की भ्रांति, पांचवी आत्मा से ब्रह्म से अलग जगत के सत्य की भ्रांति। वो तो है पांच प्रकार की। अध्यास दो प्रकार का बताया, एक विषय का, एक विषय के ज्ञान का, एक अर्थाध्यास एक ज्ञानाध्यास। अब ये कहते जो अर्थ अध्यास है ना, विषय का अध्यास, वो छह प्रकार का है। अब ये कथा में बातें नहीं खुलती हैं ये। अब कथा में भी जहाँ दोनों काम हम लोग कर रहे हैं ना, कथा भी है साथ साथ में पढ़ भी रहे हैं, तब ये अध्याय ये स्वाध्याय की बात चलती है। इसको थोड़ा दिमाग लगता है कि अर्थ का अध्यास छह प्रकार का है। पहला क्या अध्यास है, केवल संबंध का अध्यास। ये संबंध का अध्यास, मानो हमने किसी के साथ हमारा संबंध जो मान रखा, हमने मान रखा है ना, ये पति है, हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है, ये हमारा पुत्र है, ये भी हमने संबंध बनाया हुआ है ना, तो कहते हैं कि ये संबंध क्या है। एक केवल संबंध का अध्यास होता है। जैसे जो अनात्मा है ना, जो जड़ है, उसमें हमारे को आत्मा को अध्यास हो गया संबंध का। संबंध का हमारा संबंध है उसके साथ, एकता मान रखी ना हमने, हमने इस प्रपंच के साथ अपनी एकता, इस शरीर के साथ हमने अपने आप को एक माना हुआ है, ये हमारा संबंध है मात्र, केवल संबंध का अध्यास है ना हमारा। हमारा स्वरूप इसमें अध्यस्त नहीं है, हमारा जो स्वरूप है ना सत्यतानंद, वो इसमें नहीं है, लेकिन संबंध हमारा इसमें है। इसका जो धर्म है उसको हम अपने अपने मान रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, मैं छोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ये कैसे मान रहे हैं, संबंध है ना हमारा इसके साथ, ये केवल हमारा संबंध का अध्यास है, स्वरूप का नहीं है, संबंध का अध्यास है। हमने अपने आप को तादात्म्य मान रखा, शरीर में देह में आत्मा का अध्यास हो रहा है। तो ये कहते हैं उस समय, जैसे समय ऐसा होता ना हम लोगों को, तो क्या होता है, ये कहते हैं कि उस समय में आत्मा का अनात्मा के साथ तादात्म्य संबंध मात्र अध्यस्त है, हमारा इसके साथ संबंध है, संबंध का अध्यास है, हमारा स्वरूप इसमें नहीं है, ये है केवल संबंध का अध्यास। गोरा मानना, काला मानना, क्षत्रिय मानना, ब्रह्म मानना, अपने आप को ब्राह्मण मानना, क्षत्रिय मानना, ये क्या है, ये केवल हमारा संबंध मात्र हमने मान रखा, संबंध करके ऐसा भास रहा है हम लोगों को, वैसे वास्तव में हमारा स्वरूप ऐसा नहीं है। एक होता है संबंध सहित संबंधी का अध्यास, वो तो केवल संबंध का अध्यास है ना, मानो शरीर के साथ हमारा संबंध है, तो संबंधी कौन हुआ, हम हुए। संबंधी होता है जिसका संबंध होता है, उसको बोलते हैं संबंधी। तो इसमें हमारा संबंध का अध्यास है, संबंधी का नहीं है, हम लोगों नहीं इसमें अध्यस्त हैं, हम लोग कल्पित नहीं है, लेकिन जो प्रपंच है उसका हमारे में क्या है, संबंध भी अध्यास है और संबंधी का भी अध्यास है, दोनों का ही। जो उसका जड़ रूप है, जो उसका कर्तृत्व रूप है, भोक्तापना रूप है, जितना रूप है वो हमारे में अध्यस्त है, उसके सहित भाव ना प्रपंच सत्य है, ना प्रपंच का जो स्वभाव है, ना प्रपंच का स्वरूप है, वो भी सत्य नहीं है। जो संबंध हमारे में भासता है ना उसका, वो भी झूठा है, और वो जो संबंधी है वो भी झूठा है। तो दोनों का हमारे में अध्यास हो रहा है। हरिओम। आत्मा में अनात्मा का तादात्म्य संबंध और स्वरूप दोनों अध्यस्त हैं। आत्मा में जो आत्मा, उसका अनात्मा में केवल संबंध अध्यस्त है। हमारा शरीर में, अंतःकरण में, इंद्रियों में केवल संबंध मात्र अध्यस्त है, लेकिन हमारे में शरीर का, इंद्रियों का संबंध और शरीर इंद्रिय दोनों ही अध्यस्त हैं, दोनों कल्पित हैं, नहीं हुए। तो दो प्रकार का ये हो गया, एक तो हुआ केवल संबंध का अध्यास और दूसरा हुआ संबंध सहित संबंधी का अध्यास, दो प्रकार का हुआ। और तीसरा केवल धर्माध्यास। धर्म क्या है? मानो जैसे शरीर का धर्म है गोरा काला, जन्मना मरना, इस शरीर का धर्म है ना, उसका अध्यास हो रहा है। और इंद्रियों का धर्म क्या है? सुनना, सुगंधी लेना, रस लेना, देखना, ये इंद्रियों का धर्म है ना, ये धर्म का अध्यास हो रहा है, केवल धर्म का, धर्म का हो रहा है ना। इनके स्वरूप का अध्यास नहीं हमारे में हो रहा। कैसे नहीं हो रहा? आप कहेंगे बोल दिया आपने कि धर्म का अध्यास हमारे में हो रहा है, कैसे हो रहा है ये कभी समझा है आपने कि भ्रांति हमारे में कैसे हो रही है? हम बोलते हैं कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं रस लेता हूँ, ये बोलते हैं ना, ये बोलते हैं। ये किस लिए बोलते हैं? कि हमारे में इन धर्मों का अध्यास है, भ्रांति है। लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि मैं आँख हूँ। देखती क्या है? आँख देखती है ना, आँख का धर्म है देखना। ये तो हम बोलते हैं कि मैं देखता हूँ, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि मैं आँख हूँ। ये बोलते हैं कि मैं सुनता हूँ, कभी हमने ये नहीं कहा कि मैं कान हूँ। इसका मतलब कि धर्म हमारे में है अध्यस्त, इनका स्वरूप नहीं है हमारे में। ये समझी ना बात? देखना सुनना गोरा काला इत्यादि का हमारे में है अध्यास, लेकिन इनके स्वरूप का नहीं है। और दूसरा क्या है? धर्म सहित धर्मी का अध्यास, वो कैसे है? धर्म, ये तो केवल धर्म का अध्यास हुआ कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये तो हम करते हैं। इनका स्वरूप हम अपने आप को कभी नहीं मानते, ना हम अपने आप को आंख मानते हैं, ना कान मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं। लेकिन ऐसा भी है कि हम धर्मी भी हमारे अंदर है, हम अपने आप को धर्मी मानने, धर्म भी मानने, वो क्या है? जैसे कहते हैं कि हमारे अंतःकरण का धर्म है ना, कर्तापना भोगतापना, अंतःकरण का धर्म है ना, करना सुनना भोगना, सुनना नहीं करना और भोगना, ये अंतःकरण विशिष्ट का धर्म है, चिदाभास का धर्म है। लेकिन हम अपने अपने में मानते हैं, हम कहते हैं कि मैं करता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं पुण्यी हूँ, मैं पापी हूँ, ये किसका धर्म है? पुण्य करना पाप करना, मतलब कर्ता समझना अपने आप को, ये अंतःकरण का धर्म है। तो केवल हम धर्म ही नहीं मानते, धर्मी भी बने हुए हैं, अंतःकरण बने हुए हैं। हम अपने आप को कर्ता भोगता मान के क्या, धर्म का भी हमारे में अध्यास है, धर्मी का भी अध्यास है, अंतःकरण के धर्मों का भी, अंतःकरण का भी। हमने अपने आप को अंतःकरण मान रखा है, आंख कान से हमने अपने आप को नहीं माना था, केवल उसके धर्मों को अपने में माना था। लेकिन अंतःकरण में हम अपने आप को मान लिया, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये तो अंतःकरण का काम है, हमारा काम नहीं है। तो ये हमारे को चौथा अध्यास है, धर्म सहित धर्मी का अध्यास। और पांचवा क्या है? अन्योन्याध्यास। अन्योन्य का अर्थ होता है जैसे घट में पट का अध्यास, एक में दूसरे का अध्यास, आत्मा में अनात्मा का, अनात्मा में आत्मा का अध्यास, भाव आत्मा को अनात्मा मानना, अनात्मा को आत्मा मानना, जे अन्नो अन्य, अन्य में अन्य का अध्यास। और अब ए हो गए पांच, और छठा क्या है? अन्यत्राध्यास। अन्यत्र कहते हैं दोनों में से एक का अध्यास, अन्यत्र कहते हैं दोनों में से एक का अध्यास। ये कहते हैं ये कैसा है? अनात्मा में आत्मा का स्वरूप अध्यस्त नहीं, किंतु आत्मा में अनात्मा का स्वरूप अध्यस्त है, ये अन्यत्राध्यास है। अनात्मा में आत्मा का स्वरूप अध्यस्त नहीं है, संबंध अध्यस्त है, लेकिन आत्मा में अनात्मा का स्वरूप भी अध्यस्त है, संबंध भी, दोनों अध्यस्त है। अनात्मा जो है आत्मा में स्वरूप से ही नहीं है। रज्जू में जो सर्प है ना, वो सर्प जो स्वरूप से ही नहीं है, उसमें केवल ये नहीं कि उसका संबंध ही नहीं है, सर्प भी नहीं है, लेकिन दोनों भासते हैं, उसका संबंध भी भासता है, सर्प भी भासता है। इस प्रकार का जो अध्यास है ना उसको कहते हैं अन्यत्राध्यास। यह छह प्रकार का हमारे को भ्रम हो रहा केवल विषय का अर्थ का, तो ये कहते हैं केवल आपको समझाने के लिए इन्होंने इतना लंबा किया है। वैसे तो ये कहते हैं संपूर्ण जो अध्यास है ना, मूल में क्या कहा था, मूल में फिर मूल में आइएगा, मूल में ये कहते हैं कि सकल अध्यास जो जगत में दसे, जो संपूर्ण छह प्रकार का अध्यास आपको दिखाया ना हमने, या दो प्रकार का तो पहले बताया था, अर्थ ज्ञान, अर्थ का अध्यास और ज्ञान का अध्यास, परंतु बाद में अर्थ का जो अध्यास वो छह प्रकार का बताया, जहां पांच प्रकार की भ्रांति बताई। तो ये कहते सकल अध्यास जो जगत में दसे, जो संपूर्ण अध्यास हमने संसार में आपको दिखाए ना, सब हुया ही के बीच में धसे। सभी जो अध्यास है ना वो क्या है, दो प्रकार के अध्यास के अंदर ही आ जाते हैं, वो सभी उसी में आ जाते हैं। कौन से? एक संसर्गा अध्यास, किस किस के दो में आ जाते हैं, जो कहते पांच प्रकार के हमने आपको अध्यास या छह प्रकार के बताए या पांच प्रकार की जो भ्रांति बताई ना, वो कहते हैं दो में आ जाते हैं, एक तो स्वरूपाध्यास और दूसरा संबंधाध्यास, और तो कुछ बचा ही नहीं ना, दो ही तो होते हैं, एक किसी का स्वरूप होता है, एक उसका संबंध होता है, वो सारे अध्यास कहते हैं दोनों में आ जाते हैं। वो धीरे धीरे जब टीका में जाएंगे तब समझ में आएंगे, बस हमारे को इतना याद रखना है, मोटा मोटा तो यही है कि एक विषय का अध्यास, एक उसके ज्ञान का अध्यास, इन दोनों को मिला करके अध्यास कहते हैं, विषय का और विषय का ज्ञान दोनों को कहते हैं अध्यास। मिथ्या वस्तु और मिथ्या वस्तु का ज्ञान, ये दोनों का नाम है अध्यास, दोनों का नाम है भ्रांति। जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये वस्तु हैं और इनका ज्ञान है, ये सभी अध्यास हैं, कभी हुआ नहीं कुछ भी, हमारे में कुछ नहीं है, ब्रह्म में कुछ भी नहीं है, ब्रह्म अखंड है, सत्यत आनंद है, लेकिन उसमें से ये सब उसमें भासते हैं, उसके अंदर है नहीं, जो चीज जिसमें कल्पित होती है उससे अलग उसकी सत्ता नहीं होती, जो सर्प है उसकी रस्सी से अलग कोई सत्ता नहीं है, रस्सी से अलग उसकी सत्ता नहीं कोई भी, रस्सी की क्या है, व्यवहारिक सत्ता है, सर्प की सत्ता क्या है, प्रातिभासिक सत्ता है, वो हुआ नहीं है, उसका कहाँ उसमें है, वो यदि वो सत्य होता तो उसकी भी व्यवहारिक सत्ता रहती, व्यवहारिक सत्ता नहीं उसकी, वो तो केवल प्रतीति मात्र है। इसी प्रकार जो संसार है ना ये ब्रह्म में है नहीं है, ब्रह्म से इतर इसकी कोई सत्ता नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो है ना प्रपंच, वो ब्रह्म से इतर कहीं सिद्ध होता ही नहीं है। किस प्रकार जानेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि जागृत है, जो है ना है बोलते हैं, ये सत्ता है कि नहीं, ये किसकी है, जागृत की नहीं है, ये तो ब्रह्म की है, बोलेंगे ना मैं जागता हूं, हूं जो बोलते हैं ये हमारा है, ये जागृत हूं, जागता हूं, सोया हूं, ये हमारा हूं वाली जो सत्ता है हमारी ब्रह्म की है। यदि वो जागृत की होती तो जागृत के जब नहीं जागृत था तब नहीं रहनी चाहिए, समझते हैं ना, है पना जो है यदि जागृत का होता जागृत के ना रहने से नहीं रहना चाहिए, लेकिन कहता अब जागृत नहीं है, है तो वहां भी है, इसका मतलब जागृत के रहने पर भी रहता है, जागृत के ना रहने पर भी रहता है, तो क्या हुआ, जागृत झूठा हुआ ना, है पना तो तब भी है जब जागृत नहीं है। इसी प्रकार स्वप्न है स्वप्न नहीं है, दोनों को हम बताते हैं, तो हम तो हुए लेकिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये कल्पित है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।